أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ہم تقریباً ماہ مبارک رمضان کی سے گزر چکے ہیں، عید منا چکے ہیں، اور اس وقت ہم ماہ شوال میں ہیں. معمولاً جو جس طریقے سے مادی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، اس سے زیادہ ہمیں معنوی لذات اور معنوی چیزیں بہت مس کرتے ہیں. ہم ماہ مبارک رمضان بھی اس طریقے سے ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو انسان اس کی روحانیت، اس کی معنویت، ان چیزوں کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے آ جائے. وہی فضا، وہی ہوا، وہی روزے، وہی تلاوت قرآن. لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان تمام ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جو ہم نے روزے رکھے تھے، وہ جو تلاوتیں کری تھیں، وہ جو خدا کی عبادتیں کری تھیں، وہ جو شب زندہ داری کری تھی، آہستہ آہستہ اس کی نورانیت جا رہی ہے. کیا کریں کہ وہ نورانیت باقی رہی ہے، وہ فضا باقی رہے. ہم نے آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیوں ہمیں وہ چیزیں واپس زندہ نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے معرفت خدا کا کم ہو جانا. آج ہمارا موضوع یہی ہے، معرفت خدا. یہ معرفت خدا کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت، لقاء اللہ. یہ الفاظ موٹے موٹے سنتے ہیں ہم، لیکن یہ ہوتا کیا ہے اور کیسے اس کو ہم برقرار رکھیں؟ اور جس وقت یہ برقرار رہ جائے گا، اس وقت جو ہے اصل انسان، اس کو زندگی کا اصل لطف اور اصل لذت اور اصل معنویت حاصل ہوگی. یہ جو ہمیں اچھے دن، اچھی ایام گزر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت کم ہو جاتی ہے. اور اسی کو خداوند متعال نے انسان کی اور کائنات کی خلقت کا ہدف قرار دیا ہے. یہ جو مشہور و معروف آیت ہم لوگ سنتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. بعض روایت میں آئمہ نے کہا ہے کہ الا ليعبدون، عبادت سے مراد ہے معرفون، یعنی معرفت. تمہیں نہیں پیدا کیا گیا مگر اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کے لیے. وہ جو کنز مخفیہ والی حدیث ہے، وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی پہچان کے لیے ہم کو پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ طلاق کی 12 آیت میں بھی ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا. اللہ وہ ہے کہ جو کہ خلق کرتا ہے، جس نے خلق کیا 7 آسمانوں کو اور ان کے جیسی زمینوں کو، اور ان کے درمیان اپنے امر کو نازل کیا. یہ سب کیوں کیا خدا نے؟ یہ 7 آسمان کیوں خلق کیے؟ یہ زمین کیوں خلق کی؟ اس میں اپنا امر نازل کیوں کیا؟ لتعلموا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، پہچان لیں، معرفت حاصل کریں. کیا جان لیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بتحقیق اللہ جو ہے وہ ہر شیء پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور بتحقیق اللہ جو ہے وہ علم کے لحاظ سے ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے. یعنی دو چیزیں جان لیں، اللہ قادر ہے اور اللہ عالم ہے. یعنی کوئی شے اسے مجبور نہیں کر سکتی، وہ قادر مطلق ہے، اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ علیم علم رکھتا ہے. بس اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ خدا نے پوری کائنات اس لیے خلق کری، یہ آسمان اور زمین اس لیے خلق کری کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے اور اس کا علم ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سا علم ہے، کیوں چاہتا ہے خدا، خدا کیوں چاہتا ہے؟ کیا ہمارے جاننے کی اس کو ضرورت ہے کیا؟ بھائی میں ایک انسان ہوں، میں زوردار تقریر کرتا ہوں آپ کے سامنے، بہت زیادہ محنت سے آیات روایات مدلل گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ میرے علم کو پہچانیں. جب آپ لوگ میرے علم کو پہچانیں گے پھر بار بار بلائیں گے، پھر اگر کوئی مسئلہ ہوگا میرے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں. کیا خدا کو ضرورت ہے؟ خدا تو اس کو تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کیوں پہچانوانا چاہتا ہے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے. اس کی معرفت سے ہمیں فائدہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی معرفت سے ہی ہم زندہ ہوں گے، حیات پائیں گے. اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں پر عمل کرو تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے. تو یہ دین ہم کو زندہ کرتا ہے. زندہ کیا مطلب کیا ہے؟ زندہ کہتے ہیں دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، ایک مادی زندگی ہوتی ہے، ایک معنوی زندگی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم مادی طور پہ تو زندہ ہوتے ہیں، معنوی طور پر مر چکے ہوتے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. اس لیے وہ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ دو طرح کے مردہ ہوتے ہیں، ایک یوں لیٹے ہوئے ہیں وہ مادی موت ہے، لیکن ایک یوں لیٹے ہوئے سیدھے ہمارے جیسے، جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر معنوی طور پر مردہ ہو چکے ہیں. کیا مطلب ہے اس میں؟ جب خدا نے ہمیں خلق کیا تو کسی کائنات کی کسی شے کو وہ چیز نہیں تھی جو انسان کو دی. کیونکہ ٹائم کم ہے لہٰذا وہ تفصیل میں چلے جائیں گے. وہ آیات آپ دیکھیں جو خلقت انسان سے متعلق ہیں، اس میں مراحل بتائیں، انسان پہلے نطفہ تھا، پھر خون کا قطرہ تھا، اور مختلف جو اس کے مراحل ہیں وہ بتانے کے بعد چاہیے ہم نے اس میں ایک روح کو نفق تو کیے من روحی، اور میں نے اس میں اپنی روح کو کی. یہ چیز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں. اسی لیے وہ آیت جو فرماتی ہے کہ ہم نے اس کو آسمانوں پر، پہاڑوں پر دیا، اس نے اس کو تحمل نہیں کیا. حمل حل انسان، اس کو انسان نے حمل کیا. वो क्या चीज थी? वो ये रूह, कल्ब इंसान, कल्ब मोमिन, ये किसी और को हासिल नहीं है, ये सिर्फ इंसान को हासिल। इसकी खासियत क्या है? ये खुदा से है, ये खुदा से है, इलाही है। और जब ये खुदा से है तो फिर इसमें खुदा का जलवा है। लिहाजा हम फौरन जब कोई भी मानवी चीज सुनते हैं एकदम से मुनकलिब होते हैं, एकदम से हमें तब्दीली आती है। ये क्यों आती है? ये उस मानवी पहलू की वजह से, हमारे अंदर जो खुदा ने अपनी रूह भेजी है वो इलाही फैक्टर की वजह से हमें मानवियात भी अच्छी लगती है। मानवियात अच्छी लगती है नफ्स अम्मारा की वजह से। अच्छा खाना अच्छा लगता है, ज्यादा सोना अच्छा लगता है, आराम करना अच्छा लगता है, बड़ा घर अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ी, बड़े मोबाइल, ये सब अच्छा लगता है, ये नफ्से अम्मारा की वजह से। लेकिन हमारे अंदर एक और चीज भी दी है, हैवानों में बस यही है, नफ्से अम्मारा की है। हमारे अंदर हमें किसी की मदद करना अच्छा लगता है, किसी मजलूम के लिए आवाज उठाना अच्छा लगता है, दिल चाहता है शाम के मजलूमों के लिए हम उठ खड़े हों। ये जानवरों में नहीं है। हमें इबादत करने का दिल चाहता है, खुदा से राजो न्याज करने का दिल चाहता है। बस लिहाजा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी मादी जिंदगी पर तवज्जो करे, मानवी जिंदगी को खत्म कर दे, तो वो एक अच्छा हैवान है। आज की वेस्टर्न जिंदगी ने इंसानों को एक अच्छा हैवान बना दिया। क्या मतलब? यही बेहतर से बेहतरीन खाने प्रोवाइड कर दिए, बेहतर से बेहतरीन लिबास, बेहतर से बेहतरीन बिस्तर, बेहतर से बेहतरीन घर, हर किस्म की मादी फैसिलिटीज अपने उरूज तक पहुंच गई। लेकिन क्या मानवी तौर पे भी इंसान ने रुष्ट किया? क्या मानवी तौर पर भी किसी पर जुल्म होता है, वो बेदार होता है? क्या मानवी तौर पर भी वो खुदा से राजो न्याज के लिए आगे बढ़ा? नहीं, उस लिहाज से वो मुर्दा है। उसको जिंदा करने के लिए मारिफत की नूरानियत चाहिए। लिहाजा कहा गया अल मारिफतु नूरुल कल्ब, दिल या रूह का नूर क्या है? मारिफत। बस ये इतनी इम्पोर्टेंट शय है कि इस पे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब आप फरमाते हैं कि मैं पसंद नहीं करता कि बचपन में मर जाता और बहिष्ट में चला जाता। बहिष्ट में जा रहे, मैं पसंद नहीं करता कि बचपन में ही मैं मर जाता, क्योंकि मासूम मरा है लिहाजा उसके लिए जन्नत है। मैं पसंद नहीं करता कि बचपन में मर जाता और बहिष्ट में चला जाता, और बड़ा नहीं होता कि अपने रब को पहचान सकता। बस हैफ है कि हम अकली तौर पर रुश तो कर गए लेकिन हमने खुदा को नहीं पहचाना। इसीलिए एक और हदीस बहुत ही बेहतरीन हदीस है, वाकई इसको लिखना चाहिए किसी जगह पर, इमाम जाफर सादिक आप फरमाते हैं कि अगर लोग ये जानते कि मारफत खुदा में क्या फजीलत है तो दुनियावी जिंदगी की जर को बर और उसकी नेमतों पर आंखें नहीं जमाते। जो हमें दुनिया की जरूरत को बहुत अच्छी लगती है, वो फला ने फला मोबाइल ले लिया, फला के पास फला गाड़ी आ गई, उसका घर और बड़ा हो गया, हम इंप्रेस होते हैं ना। अगर हमें खुदा की मारिफत की फजीलत होती तो हमारे लिए सब देखा, इनकी निगाह में इनकी दुनिया इनके पांव तले खाक से कम तक होती। ये जो हमें दुनियावी तौर पर तरक्कियां मिलती हैं, दुनियावी तौर पर हम आगे बढ़ते हैं, उनके नजदीक उनके पांव की खाक के बराबर। मारफत खुदा से वो लुत्फ अंदोज होते हैं, उस शख्स के जैसी लज्जत हासिल करते जो मुसलसल जन्नत के बागात में औलिया और दोस्ताने खुदा के साथ होता है। यहाँ पे जन्नत में औलिया खुदा के साथ रहना आसान नहीं है। हदीस में है कि चंद हजार सालों की लोग सब में लगेंगे ताकि रसूलुल्लाह का एक दीदार कर सके। जन्नत में जन्नत के भी दराजात है ना। अभी चंद रोज पहले किसी शख्स मिला जिसने बताया कि मैंने सिर्फ जाफर को ख्वाब में देखा। तो पहले मैंने उनसे अहवाल पूछी कि कैसे हैं आप, तो आप बहुत मज़े में हो, यहाँ पे आज़ादारी होती है, जो है नौहा खानी होती है, इमाम का जिक्र होता है, बहुत मज़े ही मज़े हैं यहाँ पर। फिर वो पूछते अच्छा इमाम ज़माना से भी मुलाकात हुई या नहीं हुई। क्या इमाम की तरफ से दो दफ़ा बुलावा आ चुका है लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा इमाम से मुलाकात। बस जैसे इस दुनिया में खुदा ने हर कोई हर एक से मिल लेता है, वहां ऐसे नहीं होगा। इमाम से मुलाकात करने के लिए हिम्मत चाहिए, तकवा चाहिए, किरदार चाहिए। इस दुनिया में हम काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, तो फिर इमाम का दीदार कर सकेंगे, वरना हर एक को मैसर नहीं है। जिस शख्स को अल्लाह की मारफत हासिल हो जाए वो इस दुनिया में वो लज्जतें उठाएगा जैसे मुसलसल जन्नत के बागात में रहता हो औलियाए खुदा और अल्लाह के दोस्तों के साथ। अल्लाह की मारफत पर हर अल्लाह की मारफत के इमाम बहुत लंबी हदीस है। अल्लाह की मारफत हर तनहा का मुनस है। कभी कभार हम बहुत तनहा रह जाते हैं लेकिन जिसको अल्लाह की मारफत है वो तन्हाइयों का साथी। बल्कि मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि अगर सही मारफत हासिल हो जाए इंसान तन्हा हो जाता है, उसका दिल चाहता है क्योंकि कोई भी चीज उसको इर्जा नहीं कर सकती, उसकी प्यास नहीं बुझा सकती, उसका दिल कहीं और लग गया है। हमारे ऐसा दुनिया में भी होता है, दुनिया में भी किसी शय से दिल लग जाए फिर दोस्तों में मजा नहीं आता, घर वालों में बैठे हैं कहते तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा दिमाग ख्याल दिल कहाँ पर है, तुम यहाँ पर नहीं हो, कहीं और हो। जब खुदा की मारफत हासिल हो जाए वो तन्हा हो जाता है, तन्हाई फील करता है, सिर्फ औलिया खुदा के साथ उसकी मजा आता है। तो अल्लाह की मारफत हर तन्हाई का मुनिस है, हर अकेले का हमराह है, हर अंधेरे में नूर है। कभी हमें पता नहीं चलता क्या करें, क्या फैसला करें, फलां से मिलें ना मिलें, मुलाकात करें ना करें, गुमराही होती है। अगर अल्लाह की मारफत होगी तो हम इजीली फैसला कर पाएंगे, हिदायत होगी। हर अंधेरे में नूर है, हर कमजोर की कुव्वत है और हर बीमारी की शफा है। ये अल्लाह की मारिफत कितनी अहम तरीन चीज है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद इस बात को जानने की जरूरत है कि ये मारिफत परवरदिगार मारिफत खुदावंदी है क्या चीज। सबसे पहली बात यह है कि ये मारिफत फितरी है। फितरी का मतलब ये है कि इसे हमें जाके कहीं से हासिल नहीं करना, हमारे अंदर मौजूद है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि जब खिलकत की थी तो मैंने बताया कि वहीं पर खुदा ने अपनी रूह हमें फूंकी है। बस इलाही उनसर हमारे हमारे अंदर खुदा मौजूद है, बाहर नहीं है। लेकिन अगर अंदर खुदा मौजूद है तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने अपनी तवज्जो अंदर की बजाय बाहर लगा दी है। जो हमारा दिल है ये बाहर की दुनिया की तरफ मुतवज्जे है। लिहाजा आयतुल्ला जवादी कहते हैं कि दुनिया को जानने के लिए आंखें उठानी पड़ती हैं, देखोगे तो पहचानोगे, लेकिन खुदा को जानने के लिए आंखें झुकानी पड़ती हैं, अपने अंदर देखना झांकना पड़ता है। मैं कहाँ हूँ? कभी उसके साथ एक लहजे के लिए उसके साथ खलवत करें, बहुत शहरक से ज्यादा नजदीक है। लेकिन क्यों? हमने अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई में, अपने माश में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ताल्लुकात में, अपनी दोस्तियों में, अपने टीवी और ड्रामे सीरियल और पता नहीं क्या और क्या और क्या में लगा दिए, टाइम ही नहीं हमारे पास। इस सबसे कीमती तरीन शय की तरफ तवज्जो करते हैं। बस तवज्जो करेंगे तब खुदा को महसूस करेंगे। ये खुदा ने जो इबादतों का सिलसिला रखा है ये इसी तवज्जो को जिंदा करने के लिए, जे हो उसकी तरफ। बस हमें कहीं बाहर नहीं जाना। अब सवाल यह है कि ये क्यों हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाते? ये दुनियादारी की वजह से इस दिल पर, इस रूह पर हिजाब आ जाते हैं, लिहाजा हम नहीं देख पाते। जब एक कमरे में एक फानूस है लेकिन उसके इर्द गिर्द की बत्तियां भी रोशन है, फानूस की रोशनी मध्यम हो जाएगी। आप इर्द गिर्द की बत्तियों को गुल करें, दीगर मोहब्बतों को, पैसे की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, नफ्स की मोहब्बत, हर गैर खुदा की मोहब्बत, उसको आप खत्म करें, फिर आप महसूस करेंगे खुदा को। और वो सबसे आला तरीन लज्जत है जो एक इंसान हासिल कर सकता है। हैफ है कि हमने दुनिया की लज्जतें तो हासिल कर ली, हर किस्म की लज्जत हासिल कर ली, लेकिन जो असासी तरीन लज्जत है उससे बेबहर है। अगर वो हमें हासिल हो गई तो फिर दुनिया की हर शय हमारे लिए बेकार है, बेसूद है। क्यों? क्योंकि उसकी मारिफत हासिल हो गई। जाहिर है उस जात के आगे कौन सी जात फैल सकती है? वो ऐसी जात है जिसमें कोई नक्स ही नहीं है, और उसके अलावा हर शय में नक्स है। लेकिन हमने हर शय की तरफ तवज्जो कर लिया सिवाय उस जात वाले का। लिहाजा पहला नुक्ता मारिफत खुदा में यह है कि ये फित्री है। दूसरा नुक्ता, ये मारिफत मारिफत कल्बी है, ये आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक शख्स जो है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, सुना हुआ होगा, बहुत मशहूर और मारूफ वाक्य है कि उसने कहा कि आप जिसकी इबादत करते हैं उसको देखा भी है? मौला ने जवाब दिया, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसको मैंने ना देखा। मैं उसकी इबादत को जायज नहीं समझता कि अनदेखे हुए हस्ती का मैं इबादत करूं। एकदम से वो पूछता, अच्छा अगर देखा तो क्या क्या कैसा है खुदा? उसके जहन में यह था कि आंखों से देखा, कैसी उसकी सिफत, कैसी है वो, कैसा है देखने में, कैसा है। फिर मौला ने फरमाया कि वो हस्ती है जिसको इस आंख से नहीं देखा जा सकता। ला तुदरिकुल अबसार, ये आंखें मादी आंख उसको नहीं देख सकती, बल्कि उसको दिल की आंख, ईमान के जरिए से दिल की आंख उसको देखती है। बस ये मारिफत, दो तरह की मारिफत होती है, एक उसूली होती है, एक हुजूरी होती है। थोड़ा से जरा सा ये एक टर्मिनोलॉजी है, कोशिश करूँगा आपको समझा सकूँ। देखिए एक चीज़ होती है, जैसे आपको मैं अभी देख रहा हूँ, आपकी इमेज मेरे जहन में बन रही है रेटिना के जरिए, और मैं देख रहा हूँ कि फला शख्स बैठा हुआ है। इसको इल्म उसूली कहते हैं, इमेजेस का इल्म ही है। उन चीजें हम उस खुद उस शय को महसूस करते हैं, मैं आप मेरे अंदर नहीं आए हुए, आपकी इमेज मेरे अंदर है, मुझे इमेज का इल्म है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें मेरे अंदर है जिनको मैं शुहूद करता हूँ। जैसे भूख लगती है, भूख कोई बाहर का तस्वीर नहीं है। जैसे अभी मैं जब भूख कह रहा हूँ, आपके जहन में एक तस्वीर बन रहा है, वो इल्म उसूली है। लेकिन जब खुद भूख लगती है आपको, आप खुद भूख को हिस करते हैं, ना भूख के तस्वीर को, ना भूख के इमेज को। खुदा ऐसा है, खुदा ये जब हम क्लास में पढ़ाते हैं अल्लाह जो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ये सब इमेजेस है, तसव्वुरात का इल्म है, ये असल मारिफत नहीं है। ये जो हम अकायद की क्लास में तौहीद पढ़ाते हैं, दलाइल देते हैं, खुदा एक है, उस जैसा कोई नहीं है, ये सब तसव्वुरात है। खुद खुदा को हिस नहीं करते, हम खुदा के तसव्वुर को हिस करते हैं। असल मारिफत मारिफते शुहूदी है, मारिफते हुजूरी है, ना हुसूली। खुद खुदा को हम हिस कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुदा ने अपनी रूह फूंकी है, इस वजह से। लिहाजा नंबर एक मारिफते खुदा फितरी है, नंबर दो मारिफते खुदा ऐनी नहीं है बल्कि कल्बी है, दिल की आंख से उसको देखा जाता है। नंबर तीन, खुद उसको देखा, खुद उसको हिस किया जाता है। असल में इसके लिए अल्फाज कम है, मैं आपको बता, जैसे हम अपने आप को हिस करते हैं, जब मैं खुश होता हूँ, मैं गमगीन होता हूँ, ठीक है, मैं खुशी के तसव्वुर को हिस नहीं करता हूँ, खुद खुशी को हिस कर रहा होता। ऐसे ही है जैसे मैं आपको अभी किसी फ्रूट के बारे में बताऊं तो आप तसव्वुर करोगे फला फ्रूट, ठीक है। एक दफा आप खुद वो फ्रूट खाते हैं, वो शुहूद है। इसी तरह अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, मारिफत खुदा, इमाम ने फरमाया कि जिसको मारिफत खुदा हासिल हो जाए उसके लिए दुनिया ही है, वो जो है अभी से जन्नत के मजे ले सकता है इस दुनिया में। ये क्या है? ये ऐसे ही है जैसे मैं दूर से आपको किसी फ्रूट के बारे में बता, जब तक हम इसको चखेंगे नहीं, इस मारिफत को फायदा नहीं है। चखने के लिए क्या करें? बहुत आसान है, अपने अंदर छान, और ये हुब्बे खुदा के, हुब्बे गैर खुदा के तमाम रास्तों को बंद कर दें। तभी तो है वो हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि अगर से कोई नमाज शब की दो रकत नमाज शब, अक्सर दो रकत, पूरी नमाज शब नहीं, अगर दो रकत नमाज उससे मांगे, और मुझे दुनिया व माफीहा, दुनिया और जो कुछ दुनिया में सब कुछ दे दे, सिर्फ उनसे वो दो रकत मांगे, मैं नहीं दूंगा, मैं हाजिर नहीं हूं। क्या लज्जत है, हमने नहीं चेक क्यों नहीं चेक किया है कि हमने सारी जिंदगी इस पे तो मेहनत कर दी, कैसे तालीम हासिल करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे जो है घर बार बसाएंगे, कैसे जो है वो अपनी आएगी जिंदगी को आगे ले जाएंगे, हर चीज पे हमने अपने वक्त जाया कर दिया। यदि इन लज्जतों की तरफ भी तवज्जो करें, ये कौन सी लज्जत है? बस ये जो है वो मारफत खुदा से हासिल होती है। मुझे नहीं पता वक्त कितना है हमारे पास। हाँ तो अब ये मारफत खुदा की कुछ निशानियां बताई गई हैं रिवायात में, पूछा गया है हमें कैसे पता लगे। तो और तकरीबन 10-15 रिवायात हैं कि जिसमें बताया गया है कि अगर मारिफत खुदा हासिल हो गई तो ये सब चीजें हासिल हो गई। हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब आए फमन युरिदल्लाहु अन यहदीहु, यानी खुदा जिसको चाहता है उसकी हिदायत करता है, हिदायत ही मारिफत। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपसे सवाल हुआ कि मौला ये मारिफत के शर्ह सदर क्या है? शर्ह सदर इसी आयत के साथ है, शर्ह सदर, शर्ह सदर क्या है? तो आपने फरमाया ये एक नूर है जो खुदा अपने बंदे मोमिन के दिल में दाखिल करता है, जिससे उसे शर्ह सदर हासिल होता है। उसके खुदा है जो इंसान के दिल में उतारता है इस नूरानियत। साहबी आगे सवाल पूछता है रसूलुल्लाह से कि आया इस शर्ह सदर को, इस नूरानियत को, इस हिदायत को पहचानने का भी कोई जरिया है? कैसे पहचाने कि खुदा ने ये नूर नाजिल कर दिया है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ, वो शख्स जो है दारुल खुलूद, जो हमेशा रहने वाला जहान है आखिरत, उसकी तरफ रगबत करेगा। याद है आपने रखा हमेशा उसको आखिरत उसके सामने हो, और दारुल गुरूर ये दुनिया जो धोखा देने वाली दुनिया है इसकी तरफ से इसको बेरगबती हो जाएगी, दुनिया से बेरगबती आखिरत की तरफ रगबत हो जाएगी, और मौत से पहले मौत के लिए तैयार होगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर किसी भी मसले में आप ये सोचें कि आपको अभी मौत आ जाए, मौत तो कभी भी आ सकती है, हमें क्या पता अगली सांस है भी हमारी या नहीं, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। अगर इंसान हर लम्हे ये सोचे अगर मुझे इस वक्त मौत आ जाए क्या करूं, फिर आप कभी दुनिया के लिए काम करेंगे? हमने ये सोच लिया है कि हमें जिंदा रहना है, बोलते नहीं है जबान से, लेकिन हमारे दिल में क्या है, हमें बाकी रहना है, हमें इसीलिए दुनिया जो है ना ये बाकी रहने वाला है, इसलिए इस पर ये दो दुनिया इस तरह से धोखा दे। लेकिन अगर इस अकीदे को इंसान सही कर ले कभी भी मौत आ सकती है। आप देखिएगा कि आप किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे, कभी जुल्म नहीं करेंगे, हमेशा सही खुदा का रास्ता इख्तियार करेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बेरगबती हो जाएगी, दुनिया से बेरगबती हो जाएगी, बस याद आखिरत और इस दुनिया से बेरगबती इस नूर, इस नूरानियत का एक निशानी है। इसी तरह हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप फरमाते हैं कि बतहकीक तेरे लिए दिल है और इसके कान, दिल है और इसके लिए कान। जब खुदा किसी की हिदायत का इरादा करता है तो उसके दिल के कान खोल देता है। जिस तरह ये जिस्म के कान हैं जो सुनता है, हमारी रूह हमारे कल्ब के भी कान हैं। जब खुदा किसी की हिदायत का इरादा करता है कि अब इसकी हिदायत कर दूँ मैं, इसने कोई अच्छा काम किया है इसकी हिदायत कर दूँ, तो क्या नेमत देता है? हमारे दिल के कान खोल देता है। और अगर इसके अलावा कोई और इरादा करता है तो इसके दिल के कानों को बंद कर देता है, खतरनाक अकड़ देता। अगर उसने हमारी हिदायत का फैसला नहीं किया तो फिर क्या होगा? हमारे दिल के कान जो फितरतन खुले हुए थे, हम फितरतन इलाही थे, लेकिन अब वो दिल के कानों को बंद कर देगा। फला यस्लिहु अबदन, बस वो कभी भी अबदन अबदन कभी इस्लाह नहीं पाएगा, इस्लाह नहीं होगी उसे। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके दिल के कान बंद कर दिए, अब वो हक की आवाज नहीं सुन पाता। और फिर इमाम फरमाते हैं कि यही माना है इस आयत का कि अम अला कुलूबि अक्फालुहा, क्या इनके कुलूब पर क्या है? कुफ्र लग गए, ताले लग गए कि सुनते नहीं। बस अगर खुदा जो है हमारी हिदायत का इरादा करेगा तो हमारे दिल को के कानों को छोड़ देगा। इसी तरह काफी सारी अहादीस है, मैं इंशाल्लाह एक सलवार पढ़ दी इन तमाम अहादीस के लिए, फिर लेके चल जाऊंगा। मारफते खुदा रखने वाले इंसान का दिल हमेशा महजून रहता है, महजून। इमाम अली की हदीस है, जहाँ फरमाते हैं आरिफ का चेहरा शाद और खानदान होता है, लेकिन उसका दिल खौफजदा और महजून होता है। ये महजून क्यों होता है? ये भी हदीस है। जब हम किसी हस्ती को चाहते हैं ना, जब उससे मोहब्बत करते हैं, खौफ होता है कि वो चला ना जाए, खौफ होता है वो नाराज ना हो जाए, खौफ होता है कि उससे जुदाई ना हो जाए। जिससे बहुत चाहते हैं ना तो उसकी जुदाई का खौफ होता है। लिहाजा हदीस में है कि अल्लाह की दूरी का, ये हदीस भी मैंने लिखी थी और एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, इमाम अली की हदीस है कि अल्लाह की दूरी के खौफ से गिरिया करना आरिफों की इबादत है। हमें क्योंकि मोहब्बत, अभी उस मोहब्बत को हमने जगाया नहीं है, उस मारफत को जिंदा नहीं किया, इसलिए हमें गिरिया नसीब नहीं होता। लेकिन वो आरिफ जो कि खुदा को पहचान लेते हैं, उसकी दूरी के खौफ
से गिरिया करते हैं।
इसी तरह जिसको ये इल्म हासिल हो जाता है वो दुनिया से मुस्तगनी हो जाता है, तो दुनिया का खौफ नहीं होता। दुनिया है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इमाम अली फरमाते हैं जिसके दिल में अल्लाह का इल्म मस्कन हो जाता है, यानी अल्लाह का दिल घर कर जाता है, उसके दिल में खल्के खुदा से इस्तगना बेनियाजी, खल्के खुदा से बेनियाजी मस्कन हो जाता है, फिर वो किसी से नहीं डरता, फिर उसको खौफ नहीं होता। जब इमाम खुमैनी जब इंकलाब बिल्कुल आने वाला था, फ्रांस से जो प्लेन जा रहा था, तो पूरी दुनिया के सब बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स उसमें मौजूद थे, ठीक है, हर शख्स खौफ ज़्यादा था कि क्या हो जाएगा, क्योंकि एहतमाल था कि इस प्लेन को हवा में ही क्रैश करा दिया जाएगा और ये लैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि शाह की उस वक्त खिलाफत उसकी हुकूमत थी। इमाम के जो तहरीक जो वहाँ पर चला रहे थे उन सब का कहना ये था कि इमाम को नहीं आना चाहिए, लेकिन इमाम खुमैनी ने कहा कि शायद किसी और की तरफ से इशारा हो, और तालिकानी को अपने ही जवाब दिया था फोन पर कि मुझे आना है और शायद ये इशारा किसी और का हो। हर शख्स खौफजदा, हर शख्स परेशान क्या होने वाला है, लेकिन वो इमाम को मैंने आराम की नींद सोता है उस प्लेन में। क्या है ये दुनिया से मुस्तगनी हो गया, इसको अल्लाह की मारफत हासिल हो गई, वो अली की तरह बिस्तर बर्फ के सुकून की नींद सोता है, कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ। क्या मौत देने वाला कौन है जिसने जिंदगी दी है, वो खुदा, बचाने वाला उस खुदा की जात है। आजकल हम सब जो है एक कौम के आलम में रहते हैं, उस पर तवक्कुल करें, जिंदगी मौत उसके हाथ में, बस दुआ करें, मौत तो उसने देनी है, दुआ करें इज्जत की मौत, शहादत की मौत, इससे और इससे पढ़कर क्या हो सकती, इससे और ज्यादा सआदत इंसान के लिए क्या हो सकती है। दीन के नाम पे उसको मारा जाए, मौत तो वैसे ही आदमी जब लिखी हुई मौत को आ जाए, मौत का तरीका क्या हम बदल सकते हैं, दीन की राह में मरना है वैसे भी मारे जा रहे, वैसे भी मारे जा रहे, तो क्यों ना इज्जत की मौत से बने, क्यों ना एहतजाज करके मौत मौत को खुद गले लगाए। इसी तरीके से हदीस है इमाम अली की कि सबसे ज्यादा खुदा को पहचानने वाले लोग सबसे ज्यादा खुदा से सवाल करने वाले हैं। हम शायद बहुत कम चीजें खुदा से मांगते हैं, औरों की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है हमारी, जो ज्यादा मार्फत रखते हैं खुदा की वो ज्यादा खुदा से मांगते हैं। रिवायात में कहा गया है कि अपने जूते की तस्मा भी खुदा से मांगो, खाने का नमक भी खुदा से मांगो, दुआ बड़ी से बड़ी चीज भी छोटी से छोटी। हम चाहते हैं अपने माशरे में हम चाहते हैं बावकार इज्जत चाहते हैं, हम समझते हैं ये हमारे ऑफिस का बॉस हमें इज्जत दे देगा, खानदान का बड़ा शख्स हमको इज्जत दे देगा, नहीं, इज्जत और जिल्लत उसके हाथ, उससे मांगे इज्जत, उससे मांगे हिदायत, हर शय हर चीज उससे मांगे। اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی عظمت کو تسلیم کیا اس نے اپنے کلام کو ختم کر دیا, اس کا کلام کم ہو جاتا ہے. اگر صحیح معرفت ہمیں حاصل ہوگی نا, ہم لغویات سے تو بہت ہمیں اس سے دور ہو جائیں گے, اپنے معدے کو غذا سے دور کر دیتا ہے, منہ کو کلام سے دور بند کر دیتا ہے, اپنے معدے کو غذا سے دور کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے روح کو صیام و قیام یعنی روزہ اور رات کو کی نماز راتوں کی شب زندگاری سے کانے کرتا ہے. بس یہ معرفت کی نشانی ہے, جب معرفت حاصل ہو گئی تو آپ کا کلام کم ہو جائے گا, آپ کا طعام کم ہو جائے گا, آپ کی نمازیں زیادہ ہو جائیں گی, آپ کی شب زندہ داری زیادہ ہو جائے گی, آپ کے روزے زیادہ ہو جائیں. اب آخری سوال یہ ہے کہ بھائی یہ معرفت جو کہ اتنی اہم ہے اتنی حیاتی ہے, یعنی ہمارا حضرت خلقت یہ معرفت قرار پایا ہے, اب اس معرفت کو حاصل کیسے کریں, کیا طریقے ہیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اب اس وقت تو چند لمحات رہ گئے ہیں, ایک تقریباً فہرست بار اور کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. سلوات پڑھیں محمد والا معرفت خدا, یعنی شہودی معرفت کا پہلا ذریعہ علم حصول علم حاصل کریں. ہم فزکس پڑھتے ہیں, کیمسٹری پڑھتے ہیں, میتھس پڑھتے ہیں, کمپیوٹر ہر چیز پڑھتے ہیں, توحید بھی تو پڑھیں. کیا ہمارے آئمہ نے کیا فرمانا, قرآن کیا فرمانا, یہ علم حاصل کریں, علم توحید. لہٰذا امام علی فرماتے ہیں علم پہلا رہنما ہے اور معرفت حق اس کی انتہا ہے. علم ابتدا ہے اور معرفت الہی یہ جو معرفت شہودی جو ہے یہ انتہا. نمبر دو, معرفت نفس. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے خدا کو نہیں پہچان. یہ جو حائل ہے نا ہمارے درمیان, وہ حافظ کا شعر بھی اسی پر ہے کہ ہم خود حجاب ہیں اپنے اور خدا کے درمیان. یہ ہمارا نفس, ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. لہذا امام علی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا, اور جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا. ہم اپنے نفس کے بارے میں بہت خوشبین ہیں, ہم تو غلط نہیں ہو سکتے, یہ نفس ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. ہر چیز میں ہم اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں, یہی حجاب ہے, یہ تکبر. ہم اپنے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے, ہم اپنی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں دوسروں کا نقصان ہو ہو, ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ حب نفس ہے. ہم نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا, اپنے بارے میں بہت خوش بھی نہیں, جبکہ یہ نفس ایسا ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے, تب جا کے معرفت خدا حاصل ہوگی. اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا, اپنی رزالت, اپنی ضلالت, اپنی کم مائیگی, اپنی جو ہے جو خدا پر کا محتاج ہے اس کو اگر نہیں پہچانا, اپنی مجبوریوں کو نہیں پہچانا, خدا کو قادر مطلق نہیں پہچان سکتے. ہماری ہر شے خدا پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم سمجھتے ہم فیصلہ کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہم فکر کرتے ہیں, ہمیں کامیابی ہوتی ہے. نہیں, जैसे आप देखें कोई हमें हम इम्तिहानों में इम्तिहानों से पहले कैसे खुदा को याद कर रहे होते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है तो यूं करके चलते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया उस वक्त खुदा याद नहीं आता, ये नफ्स है, ये नफ्स है। जब कामयाबी होती है भूल जाते हैं खुदा, जब कामयाबी के लिए जा रहे होते हैं खुदा 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 करते हैं। बस जिसने अपने नफ्स को नहीं पहचाना मौला के बकौल अपने रब को नहीं पहचान सकता। इसी तरीके से इबादत, इबादत के जरिए से ये हमें मार्फत हासिल होती है, जो हमारे दिल पर हिजाब आ जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं गफलत के, इबादत की नूरानियत से हमें मार्फत ये पर्दे हटेंगे। अब जरूर के बादा अल-इल्म बिल्ला, बेहतरीन इबादत अल्लाह ताला का इल्म हासिल करना, बतवाज़ो लहु और उसके सामने झुकना, मुतवाज़े होना। अब क्योंकि बहुत सारे तफक्कुर है, तवस्सुल है, लोगों की खिदमत करना है, मजलूमों की दादरसी करना है, ये हमें मारिफत देगा, खुदा से नज़दीक करेगा। अपने नफ्स को मारना है, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, गुनाहों से दूर, ये गुनाह है जो हमारे सामने अल्लाह की मारिफत को ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं वो हदीस है ना कि ये कल्ब एक सफ़ेद कागज़ की तरह है, जब पहला गुनाह करता है तो एक ब्लैक डॉट आता है, पहला झूठ जब इंसान जिंदगी में बोलता है बहुत गिरा गुजरता है, फिर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, इतने झूठ के पूरा सफेद कल्ब सियाह हो जाता है। अब जितने भी झूठ बोलेगा असलन ने ही मुझे अपनी तरफ बुलाया है, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था, तू मुझे बुलाता है अपनी तरफ खींचता है। वलौला अंता लम अदरे मा, अगर तू नहीं होता तो मैं नहीं जान सकता था कि तू कौन है। लिहाजा आइमा ने कहा है कि खुद खुदा से खुदा को मांगू, किसी और से नहीं मांगू, अपनी दुआओं में खुदा को मांगो, ए खुदा मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं बेरू हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मुझे जिंदा कर दे, मेरी रूह को जिंदा कर दे, मेरी रूह को चश्मे बीना अदा कर दे, मेरी रूह को वो कान दे दे कि जो तेरी आवाज को सुन सके, अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे। ये है मारिफत। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं खुदा हमें दीन मुबीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमा, अपने माशरे में दीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ खुदा हमारे मरहूमी कब्र में हमारी दुआओं के, हमारी नूरानियत के मोहताज हैं, उनकी कब्रों में ज़्यादा से ज़्यादा नूर इनायत फरमा दे। ऐ खुदा बहुत सारे मरीज जो हैं हमारी दुआओं के मोहताज हैं, उनको जल्द अज जल्द शिफाय आजिल इनायत फरमा दे। बहुत सारे हमारे नौजवान के गुनाह असीर हैं, पाबंद सलासल हैं, उनको जल्द अज जल्द रिहाई इनायत फरमा दे। ऐ खुदा हमारे दिल अपने इमाम के दीदार के लिए तरसते हैं, हमें जल्द अज जल्द उनका दीदार इनायत फरमा दे, उनके जबूर को जल्द अज जल्द ताजील फरमा दे, हमें उनके आवान और अंसार में शामिल फरमा दे। इतना ज्यादा सादा था, इतना ज्यादा आसान था कि सवाल की गुंजाइश ही नहीं
है। अगली दफा इंशाल्लाह।